ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये मुदीरयेत्। शृण्वतां सुखदः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। तदीयन्तस्ते हि अभद्राणि वेदनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत् सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 14 पीछे दोहराइए। तेषां कुपद्विष्टानां पततां तामसी हि अधः ये षद्युः वशः ते वै मयन्ति अश्मप्लवा इव। तेषां कुपथदृष्टानां पततां तमसि अध ये श्रद्धयो वचतव मयन्ति अश्मप्लवा इव। तेषां कुपदृष्टानां पततां तमसि अध ये श्रद्धयोः वचतव मयन्ति अश्मप्लवा इव। तेषां कुपथद्विष्टानां पततां तमसि अध ये श्रद्धयो वचस्तेव मयन्तेष्म प्लवाई। तेषां उन बुरे नेताओं का कुपद्विष्ट नाम कुमार्ग दिखाने वाले पतताम स्वयं गिरकर तामसी अंधकार में ही निसंदेह अधः नीचे ये जो कोई श्रद्धयुः श्रद्धा रखते हैं वच शब्द ते वे वै निसंदेह मयन्ति डूब जाते हैं अश्मप्लवा पत्थर की नाव ईव के समान। अनुवाद पढ़ता हूं श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की पीछे दोहराइए। जो नेता अज्ञानी हैं और लोगों को विनाश के कुमार्ग पर ले जाते हैं जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, वे वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार हैं और उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे हैं। पत्थर की नाव पानी में नहीं तैर सकती, वह तो यात्रियों समेत पानी में डूब जाएगी। इसी प्रकार जो लोग मनुष्यों को कुमार्ग पर ले जाते हैं वे अपने ही अनुयायियों समेत नरक को जाते हैं। इसका तात्पर्य पढ़ता हूं। वैदिक ग्रंथों भागवतम 11वां स्कंद 20वां अध्याय 17वें श्लोक में कहा गया है, नदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सफलभम गुरु कर्ण धारणम। हम सभी बद्ध जीव अज्ञान के सागर में गिरे हुए हैं, किंतु सौभाग्यवश हमारा मनुष्य शरीर सागर को पार करने का सुअवसर प्रदान करता है, क्योंकि ये सुंदर नाव के समान है। जब गुरु रूपी कप्तान इस नाव का निर्देशन करता है तो यह सरलतापूर्वक सागर को पार कर लेती है। यही नहीं, वैदिक उपदेश रूपी अनुकूल हवाओं के द्वारा नाव को पार करने में सहायता मिलती है। यदि कोई इस अज्ञान सागर को पार करने की समस्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता है तो वह आत्मघात करता है। जो पत्थर की बनी नाव में सवार होता है, समझो वह डूब गया। पूर्ण अवस्था प्राप्त करने के लिए मानवता को सबसे पहले उन छद्म नेताओं का परित्याग करना होगा जो पत्थर की नाव चलाते हैं। समस्त मानव समाज ऐसी भयावह स्थिति में है, इसे बचाने के लिए वेदों के आदर्श उपदेशों का पालन आवश्यक है। ऐसे उपदेशों का सार भगवद गीता के रूप में उपलब्ध है। मनुष्य को चाहिए कि वे अन्य उपदेशों को ग्रहण न करके गीता के उपदेशों का ही अनुसरण करें, क्योंकि उसमें जीव का उद्देश्य सुस्पष्ट मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् त्यज मामेकं शरणं व्रज, अन्य समस्त धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। भले ही कोई श्री कृष्ण को श्री भगवान न माने, किंतु उनके उपदेश इतने उच्च तथा मानवता के लिए इतने उपयोगी हैं कि उनके पालन करने से मनुष्य बच सकता है। अन्यथा वह योग की व्यायाम संबंधी विधियों का अनधिकारिक चिंतन ध्यान के द्वारा ठगा जाता रहेगा। इस प्रकार वह पत्थर की नाव में सवार होता रहेगा जो समस्त यात्रियों सहित डूबती रहेगी। दुर्भाग्यवश अमरीकी लोग भौतिक व्यवस्था से उबरने के लिए उत्सुक तो दिखते हैं, किंतु कभी कभी पत्थर की नाव बनाने वालों का समर्थन करने लगते हैं। इससे इनको लाभ नहीं होने वाला। उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में श्रीकृष्ण द्वारा प्रदत्त उचित नाव को ग्रहण करें, तब वे सरलता से बच सकेंगे। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, अश्वमयः प्लवो ये शाम ते यथा मजंतम प्लवम अनुमजंती दतेति राजनीत्युपदेष्टु स्वस्वभिष्युप कोपो व्यजित। यदि ये समाज राजनीति के द्वारा निर्देशित होता रहेगा और एक राष्ट्र दूसरे के ऊपर हावी होता रहेगा तो अवश्य ही पत्थर की नाव के समान डूब जाएगा। इसे मानव समाज का उद्धार नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य समझने, ईश्वर को जानने तथा मानव उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनुष्यों को श्री कृष्ण भावनामृत की शरण लेनी चाहिए। जो नेता ज्ञानी है लोगों को विनाश के कुमार्ग पर ले जाते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, वे वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार हैं। उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे ही हैं। पत्थर की नाव पानी में नहीं तैर सकती, वे तो यात्रियों समेत पानी में डूब जाएगी। इसी प्रकार जो लोग मनुष्यों को कुमार्ग पर चलाते हैं वे अपने अनुयायियों समेत नरक में जाते हैं। चर्चा हो रही है नरक में जाने की और पत्थर की नाव पे सवार होने। यहां जो पत्थर के नाव की बात हो रही है, पत्थर की क्या क्वालिटी है कि क्यों उसका पत्थर की नाव का ही उल्लेख क्यों किया गया? वाई स्पेसिफिकली पत्थर की नाव के बारे में बोला गया, किस लिए? व्हाट वॉज द पर्पज फॉर दिस? पत्थर की नाव के बारे में ही चर्चा हो रही है, लकड़ी की नाव की चर्चा नहीं हो रही। आजकल तो फाइबर ग्लास भी आ गया है, फाइबर ग्लास की चर्चा नहीं हो रही, मतलब स्पेसिफिकली पत्थर की नाव की चर्चा करी गई है। वाई? वो तो वो आगे आ रही बात, जब आप गुणों की चर्चा करते हैं तो देखेंगे कि लकड़ी की वस्तु को घड़ना, बनाना, बदलना, पलटना, चेंज करना आसान है। लकड़ी को कारपेंटर बहुत जल्दी से कार्य कर सकता है, पर पत्थर के अंदर ऐसा हो सकता है? इज इट इजी? पॉसिबल है? आसान है क्या काम? पत्थर को घड़ना बदलना बड़ा मुश्किल है। तो यहां क्या है, पत्थर की नाव की बात हो रही है कि वो लोग जो है एक गलत रास्ते पे गलत मार्ग पे फिक्स हो जाते हैं, उनको बदलना बड़ा मुश्किल है। अब आज समाज में जाके देखिएगा, जितने कल्ट चल रहे हैं, जितने जो निराकारवादी हैं, जो भगवान को रोशनी कहते हैं, प्रकाश का पुंज कहते हैं, बिंदु मात्र कहते हैं, उनसे आप चर्चा करके देखिएगा, वो अपने कल्ट के प्रति बड़े कठोर हैं, उनको बदलना बहुत मुश्किल है। आप उनको लाके देखिएगा। मैं अभी परसों मेरी मुलाकात हुई, मैरिज थी एक हमारे रिश्तेदारी में, तो लड़के वाले जो हैं अपने कृष्ण भावनावृत के संबंध में कुछ दिनों के लिए आए, फॉर फ्यू डेज, फरीदाबाद में मंदिर में गए, सब कुछ हुआ, छह महीने आठ महीने के लिए गए, उसके बाद आना बंद हो गए। तो मैंने उनसे परसों पूछा, मैंने कहा बजाज साहब आप आते थे, मुझे अब आप खुद ही कह रहे हो कि मैं नहीं आता हूं, तो उसका कारण क्या है? कहता जी मैं तो आर्य समाजी हूं, मुझे बदलना बड़ा मुश्किल है। सी, एक सिंगल सेंटेंस में उसने सारी बात खत्म कर दी कि मैं आर्य समाज को छोड़ के कृष्ण भावनामृत में नहीं आ सकता, पत्थर के समान है ये, इतने कठोर हैं, इतने इतने। आज की आप डेट में किसी को देखिए, आप ब्रह्म कुमारी को देख लीजिए, रामचरणम देख लीजिए, आप किसी सच्चे सौदे को देख, सचखंड किसी को देख लीजिए। मैं तो दसियों लोग, मैं भी पंचकुला लेक्चर देने गया था, वहां एक माता जी ने प्रश्न किया, शी वॉज अबाउट 25-30 ईयर्स की होगी, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन। तो मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो मैंने उसे कहा माता जी नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चन आंसर करूंगा, या मुझे क्वेश्चन सारे लिख के नेट पे पोस्ट कर देना, आई विल आंसर, आप मेरा उत्तर नहीं दे पाओगे। मैंने कहा जी मैं चैलेंज नहीं स्वीकार करता, आई डोंट एक्सेप्ट चैलेंजेस, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं शास्त्रों के प्रमाण सहित आपका उत्तर दे पाऊं। कहती आप मुझे बदल, आप मुझे समझा ही नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? तो उसकी जो उसको लेके आई थी प्रोग्राम है, जिनके घर में प्रोग्राम था, वो कहने लगे जी मेरी सहेली है एंड शी बिलोंग्स टू ब्रह्म कुमारीज। तो आप देखेंगे कि यही चर्चा हो रही है इस पर्पट के अंदर, इस श्लोक के अंदर यही चर्चा हो रही है कि वो पत्थर की भांति कठोर है। लकड़ी को आप घड़ सकते हो, तेजी से उसको बदल सकते हो, लकड़ी इज इजी टू मूव, पर पत्थर को बदलना इतना आसान कार्य नहीं है। अरे तू तो आदमी है, पत्थर है, बिल्कुल इमोशन से नहीं तेरे अंदर, सेंटीमेंट से नहीं तेरे अंदर, भाव ही नहीं है तेरे अंदर। पत्थर इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट। और यही वजह है कि जो कहते हैं लोगों को विनाश के कुमार्ग पर। अब विनाश का कुमार्ग क्या है? व्हाट इज दैट? जब हम विनाश के कुमार्ग की बात करते हैं तो विनाश का कुमार्ग क्या है? देखिए भगवान बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं 18वें अध्याय के अंदर, मत चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादे दृश्यसी अथ चेतत अहंकारण शोष्यसी विनक्षसी। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, बाय माय मर्सी। लेकिन यदि तुम मिथ्यावश, अहंकारवश, ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। कुमार्ग, विनाश का कुमार्ग, सन्मार्ग और कुमार्ग दो शब्द हैं। मार्ग का अर्थ है रास्ता, पाथ। कुमार्ग का अर्थ है गलत रास्ता, सन्मार्ग का अर्थ है सही रास्ता। तो कुमार्ग मतलब गलत रास्ता किसको लीड करता है? या प्रभुपाद जी लिखते हैं ट्रांसलेशन में, विनाश को। विनाश मीन्स सत्यानाश। आप, हम कहते हैं कि भूचाल आया, पूरा का पूरा शहर का विनाश हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। मतलब आप जो है विनाश के मार्ग पे चल रहे हो, विनाश के मार्ग का मतलब है कि जो मार्ग आपने अपनाया है वो मार्ग पर्टिकुलरली इतना टफ है, इतना मुश्किल है, इतना कठिन है और आपके अंदर बदलाव आना असंभव है। इसीलिए उसको जो है ऐसी नाव की संज्ञा दी गई जो कि पत्थर से बनी है। पत्थर से नाव नहीं बनती। टेक्निकली आप देखें तो पत्थर की नाव कभी सुनी भी नहीं होगी, ना किसी ने देखी होगी ना किसी ने बनाई होगी, पर एक रूपक दिया गया है, एक जो है मेटाफोर दिया गया है, रूपक दिया गया है कि ये इस तरह से सवार है जैसे कि पत्थर की नाव पर सवार है। मतलब जो आपको रास्ता दिखा रहा है वो पत्थर की नाव पे है और वो आपसे क्या कह रहा है कि मेरे साथ मेरी नाव पे आ जाओ। खुद तो गलत रास्ते पे जा रहा है और आपको भी गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो गलत रास्ता क्यों है, वाई इट इज सो, वो गलत रास्ता जो है किस लिए है, क्यों हम कहें कि उसको गलत रास्ता, ठीक रास्ता नहीं है, उसके पीछे कारण होना चाहिए ना। कि हम उसको जो है गलत रास्ता कह रहे हैं तो उसमें कारण होना चाहिए कि वो गलत रास्ता क्यों है। क्योंकि तो भगवान के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, जो हमें मैसेज दिए गए हैं, वो उस मैसेज को 100% इन टोटो फॉलो नहीं करते। जैसे आज हम चर्चा करते हैं, मुझे याद है मैं घोषगढ़ में लेक्चर देने जाया करता था। घोषगढ़ जो है ये प्रभु जी के घर के पास है, तो बैठे हैं ना पीछे, आपके घर के पास है घोषगढ़, रिवाड़ी के पास, तो वहां पर जो है बिंदु मात्र की बड़ी चर्चा थी। एक सेंटर था ओम शांति बिंदु मात्र, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो वो लोग जो है जब सेमिनार करते थे या कोई एग्जीबिशन लगती थी, मेला लगता था, उसके अंदर जो है वो अगर कोई उनके अगेंस्ट बोलता था तो उसका हाथ पकड़ लेते थे, कैसे बोल रहे हो आप। और अल्टीमेटली हमने जब वहां पर शुरू शुरू में लोगों को चैंटिंग सिखाई, लोगों को कथा सुननी सिखाई, आना सिखाया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने तो हमारे प्रोग्राम में ही आना बंद कर दिया है? और उनके घर पहुंचना शुरू कर दिया, उनको मोटिवेट करना शुरू कर दिया। और मोस्टली जो हमने मोटिवेट किए वो टीचर्स थे स्कूलों में, वो टीचर्स जो है मोटिवेट हुए तो उन्होंने दीक्षा भी ली, अभी रिसेंटली अभी 2-3 साल पहले दीक्षा भी हुई उनकी। परंतु उन लोगों के साथ उनका एक कॉन्टिन्यूअस झगड़ा था, दे वर सो स्ट्रिक्ट इन देयर मूड। अपने जो है हमने कहा अच्छा हमें शोभा यात्रा निकालनी है, तो टीचर्स ने क्या कहा, वहां के लोगों ने कहा तो उनके आगे से मत निकालिएगा, झगड़ा हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, उनके आगे से मत जाइएगा, हम दूसरी गली ले लेंगे। तो हमने उसका पाथ चेंज कर देना समझा बेटर है कि उनसे कॉन्फ्लिक्ट करना ठीक नहीं। बट दे वर दो स्ट्रांग इन देयर फेथ, इतना स्ट्रांग फेथ था कि उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं इसके बारे में सुनिए। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए, जो आपके सगुण साकार रूप की पूजा करते हैं या जो आपके जो है निर्विशेष अव्यक्त अर्थात निर्गुण निराकार रूप की पूजा करते हैं जिसको वो मानते हैं ब्रह्म, उसमें दोनों में भेद क्या है। भगवान कहते हैं जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो ओपिनियन स्वयं भगवान ने दे दिया कि परम सिद्ध कौन है और परम सिद्ध कौन नहीं है, अर्थात कौन ठीक नाव पर सवार है और कौन ठीक नाव पर सवार नहीं है, क्लैरिटी दे दी बिल्कुल। और फिर बताया उन्होंने कि जो लोग जो है इंद्रियों को वश में करके सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों के अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। इतनी सारी उसके पास योग्यताएं होनी चाहिए, इतनी सारे कार्य होने चाहिए, तब मुझे प्राप्त करेगा। पर बाद में अपना फाइनल स्टेटमेंट दे दिया कि जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो पत्थर की नाव में तैरना बड़ा कठिन है, चलती नहीं, एक क्षण पाव पानी में जैसे ही डालोगे वैसे ही डूब जाएगी। तो اس کا جو ناؤ کا چالک ہے وہی ڈوبا پڑا ہے تو آپ کو کیا اترائے گا. یہاں بات آتی ہے شردھا کی, فیتھ کی, کہ شردھا کتنی ہے آپ کے بھگوان کے شبدوں میں یا بھگوان کے بارے میں جو آپ کو صحیح گیان دے رہا ہے اس کے بارے میں کتنی شردھا ہے. ایک اولڈ لیڈی اپنی بہو کے ساتھ کتھا سننے گئی. کتھا میں اس کو ندی پار کرنی پڑی تھی, ندی میں جو ہے گھٹنے گھٹنے جل تھا, پار کرتے ہوئے نکل گئے. کتھا سنی اور کتھا میں وکتا نے کہا کہ بھگوان کے نام کا جپ کرنے سے ویکتی بھو ساگر سے پار ہو جاتا. بھو ساگر مینس سمندر, ساگر مینس سمندر, سمندر سے پار ہو جاتا. اسے بھو بھوب سمجھ میں نہیں آیا, اس دونوں کو بھو سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے. انہیں یہ لگا کہ بھگوان کے نام کا سمرن کرنے سے ویکتی جو ہے سمندر سے پار ہو جاتا. جب واپس لوٹے تو ندی چڑھ گئی, یہاں یہاں تک پانی آ گیا, ڈوبنے کا خطرہ ہو گیا, تو پانی بہا کے لے جاتا. تو بہو نے اپنا جو ہے اپنا ہرے کرشن ہرے کرشن 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 ہرے ہری ہری رام ہرے رام 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 ہرے ہرے کرتے کرتے پانی میں پیر ڈال دیا. تو ساس نے رکا, ارے مرنے جا رہی کیا, ڈوب جائے گی. تو بہو کہتی ہے ماتا جی وہ بیٹھے تھے نا وہاں پہ جو پروکتا, وہ کہہ رہے تھے کہ بھگوان کا نام لے کے سمندر پار ہو جاتا, یہ تو ندی ہے, جب سمندر پار کر سکتے ہیں تو ندی کیوں نہیں پار کر سکتے. تو ساس کہتی ہے دیکھ مجھے مت پڑھا, ساس تو ہے کہ میں ہوں, ساس کون ہے, ساس تو ہے جب میں ہوں, میں ہوں نا تو میری بات مان, یہاں کھڑی ہو جا, ابھی ناؤ آئے گی اس پہ چلیں گے, ندی نیچے اتر جائے گی پھر اس پہ چلیں گے. تو فیت شردھا ہی نہیں ہے. تو جن لوگوں کی بھگوان کے واقعوں پر, بھگوان کے شبدوں پر, بھگوان کے میسج پر شردھا نہیں ہے, وہ پتھر کی ناؤ میں سوار ہے. چاہے وہ کسی بھی کلٹ کو فالو کریں, کہیں بھی جائیں, کسی کا سنگ کریں, کسی کا ساتھ دیں, ٹیکنیکلی وہ پتھر کی ناؤ پر سوار ہے, اور پتھر کی ناؤ کبھی تیر سکتی نہیں, ان کا ڈوبنا نشچت ہے. کل میں کل نے پرسوں کی بات ہے, آئی واز لکنگ ایٹ نیوز آئٹم, تو بیچ میں ایک ایڈ آئی. ایڈ میں کیا تھا, اویکننگ آف یور سول سیشنز, اور پیچھے ایک چکر بنا ہوا ہے, وہ چکر میں چار کھنڈ کیے ہوئے ہیں, کلیوگ 1250, تریتا 1250, دواپر 1250, ستیوگ 1250. اب 2012 کے اندر کلیوگ سماپت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کلیوگ سماپت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نو دی فلاسفی دیکھیے کیا ہے, کہ لوگ مریں گے نہیں, پرلے نہیں آئے گی, کچھ نہیں ہوگا, پر 2012 کے اندر لوگ جیسے لوگ ستیوگ میں ویوہار کرتے تھے ایسے ویوہار کرنا شروع کر دیں گے. جب بجلی کا بٹن ہے دبایا تو بتی جل گئی ہے, کہ 2012 کے آتے ہی کلیوگی جیو ستیوگی بن گئے. ہاؤ از دس پاسبل, کیا سمبھو ہے کہ 2011 میں تو کلیوگی تھے اور 2012 میں آتے ہی ستیوگی ہو گئے, یا وہ ستیوگ میں چلے گئے, کیونکہ اب 1250 سال کا جو پیریڈ تھا سماپت ہو رہا ہے 2012 میں, اب آپ کو جو ہے ستیوگ میں آ جانا. تو پرلے نہیں ہونے والی, لوگ سماپت نہیں ہونے والے, پر ہونا کیا ہے کہ کلیوگی جیو جو ہے ستیوگی بن جائیں گے. اب اس فلاسفی کو اگر آپ لے کے چلیں گے, پرکرتی کے تین گن فیل ہو گئے یہاں تو آپ, کہ تین گنوں کے اندر جو ستو گن رجو گن تمو گن کا جو ویاخیا کی گئی ہے, جن کا پربھاو ہمارے اوپر رہتا ہے, سوبھاو ہمارا بنتا ہے, سارا کا سارا فیل. بجلی کا بٹن پاس, بٹن دبتے ہی سارے کلیوگی ستیوگی ہو گئے. اب یہاں پر جو ہے روپ آج جی ایک بہت سندر بات لکھ رہے ہیں کہ ہمارا شریر ایک سندر ناؤ کے سمان ہے, جب گرو روپی کپتان اس ناؤ کا نردیشن کرتا ہے تو وہ سرلتا پوروک ساگر کو پار کر جاتی ہے. گرو تو ہم نے بھی دھارن کیا ہوا, آپ ٹھیک تو کہہ رہے ہو, ہمارا شریر جو ہے ناؤ کے سمان ہے, گرو ہم نے دھارن کیا ہوا ہے, ہمیں پار لے جائے گا, نام ہم نے لے رکھا ہے, نام تو ہم نے بھی لے رکھا ہے, گرو ہم نے بھی دھارن کیا ہوا ہے. پر کیا وہ گرو جس کو آپ نے دھارن کیا ہے وہ پتھر کی ناؤ پہ سوار ہے یا हरि नाम की नाव पे सवार है। किस नाव पे सवार है? क्या वो प्रामाणिक नाव पे सवार है या पत्थर की नाव पे सवार है? ये डिफ्रेंसिएशन नहीं है। यहां पे स्पष्ट क्या कहा जा रहा है कि आप वैदिक उपदेश रूपी अनुकूल हवाओं के द्वारा नाव को पार करने में सहायता मिलती है। तो वो जो हवा है जो नाव को चला रही है, अर्थात नाव को, तो नाव में तो फ्यूल है नहीं। आजकल तो ठीक है, मोटर बोट्स आ गई हैं, पर टेक्निकली नाव में तो फ्यूल होता नहीं था। तो नाव का फ्यूल क्या है? पाल बांध देते थे, बड़ा सा पर्दा, और हवा के जोर पे चलता था। तो नाव का फ्यूल क्या है? हवा। तो हवा क्या है? हवा यहां बता रहे हैं, हवा है आपके वैदिक उपदेश। और जब वैदिक उपदेशों की बात आती है तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसे बचाने के लिए वेदों के आदर्श उपदेशों का पालन आवश्यक है। ऐसे उपदेशों का सार भगवद गीता के रूप में उपलब्ध है। परपट भागवतम का लिखा जा रहा, चर्चा भागवतम की हो रही है, परंतु प्रभुपाद जी तारीफ कर रहे हैं भगवदगीता की। तो क्या करना चाहिए? बट हाउ शुड वी अंडरस्टैंड दिस? इसे हमें किस प्रकार से समझना है? क्या तरीका है समझने का, बताइए। अब मैं आपको थोड़े से प्रभुपाद के जो है जो राइटिंग्स हैं उनको जरा थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं कि भगवद गीता में और भागवतम में क्या कहा गया। दोनों में कंट्रास्ट क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? फर्क क्या है दोनों में? मन मना भगवत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु सर्वधर्मा प्रत्यजय माम एकम शरणम व्रज। थ्योरी बता दी, सिद्धांत बता दिया, दिस इज टू बी डन, मेरा परमादेश है, ये कार्य आपको करने हैं। अब वो करने कैसे हैं ये नहीं बताया। उसके बाद गीता का उपसंहार हो गया, महाभारत पढ़ेंगे तो इसके बाद भी करना कैसे है उसका उल्लेख नहीं आता। वो करने कैसे हैं ये कार्य? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रजा। ये करने कैसे हैं इसका भागवतम के अंदर भक्तों की लीलाओं से, भक्तों की कथाओं से, भक्तों के जो कार्यकलाप हैं उनसे बताया गया है कि आपको ये कार्य कैसे करने हैं, एक्सप्लेन किया गया कि सिद्धांत को प्रैक्टिकल शेप कैसे देनी है। उसके लिए भक्तों की कथाएं ली गई कि आपको भक्ति कैसे करनी है, भगवान के प्रति समर्पण कैसे करना है, भगवान को मन कैसे देना है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, भगवान को नमस्कार कैसे करना है, सब धर्मों का परित्याग कैसे करना है। ये सारी कहानियों के रूप में जो है आपको समझाया गया कि जो सिद्धांत की बात हो रही है, जो तत्व को समझने की बात हो रही है, इसको कैसे किया जाएगा। परंतु हम मूर्ख पढ़ने के बाद, कथाएं सुनने के बाद भी नहीं समझ पाते, क्योंकि माया का बड़ा ही गहरा जाल हम पर लिपटा हुआ। फिर भगवान कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें भक्तों के माध्यम से भी समझ में नहीं आई। वो सतयुग की बातें थी, त्रेता की बातें थी, द्वापर की बातें थी, तो कलयुगी भक्त की बात सबको समझ में आएगी, तो मैं कलयुग में भक्त बन के आऊंगा। तब भगवान ने स्वयं अपने आप को प्रकट किया है भक्त के रूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में, हमें भक्ति सिखाने के लिए, टू टीच अस। पर ये जो तीन ग्रंथ बने, भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, सो इन तीनों का स्टेटस क्या है, तो ये बात जो है हम अपना थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कुछ 5-7 मिनट के अंदर प्रभुपाद की राइटिंग से, कि प्रभुपाद क्या कहते हैं। बहुत ही सुंदर, किसी ने वो ग्रंथ पढ़ा है क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट, एक प्रभुपाद ने छोटा सा जो राइटिंग्स करी हैं उसको, इसको कलेक्टिवली जो है एक छोटा सा उसमें से निचोड़ निकाल के एक छोटी सी बुक बनाई गई है क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। उसमें जो है एक बहुत ही सुंदर बात है, हाउ डज वन लर्न द साइंस ऑफ लविंग कृष्णा। आप भगवान कृष्ण से प्रेम करने का विज्ञान कैसे सीखते हो? लक्ष्य तो यही है ना, भगवान से प्रेम करना। इस विज्ञान को कैसे सीखना है, क्या सिस्टम है? तो यहां प्रभुपाद एक लेक्चर देते हैं सिएटल में सितंबर 30, 1968 में। उसके अंदर जो है कहते हैं कि मैं आपको चैतन्य महाप्रभु के मिशन के बारे में बता रहा हूं। उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि प्रेम करने योग्य केवल एक ही है, वो है कृष्ण, और प्रेम करने के लिए एक ही स्थान है, वो है वृंदावन, और प्रेम करने का तरीका केवल हमें गोपियों ने सिखाया कि कैसे प्रेम किया जाता है। कहते हैं भक्तों की अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, गोपियां जो हैं हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं, और गोपियों के अंदर सुप्रीम है राधा रानी, इसलिए कोई भी जो है राधा रानी के कृष्ण के प्रति प्रेम का पार नहीं पा सकता। अब अगर आपको जो है ज्ञान प्राप्त करना है, विज्ञान प्राप्त करना है कि कृष्ण से कैसे प्रेम किया जाए, तो उसके लिए आपको एक प्रमाणिक ग्रंथ चाहिए जो आपको बताएगा कि भगवान कृष्ण से प्रेम कैसे प्राप्त किया जाता है, और वो प्रमाणिक ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। श्रीमद् भागवतम जो है एक स्पॉटलेस पुराण है जिसमें कि कोई दाग नहीं है, और ये बताता है कि आपको कृष्ण का प्रेम कैसे प्राप्त होगा। इससे बढ़िया कृष्ण का प्रेम का ज्ञान प्रदान करने के लिए कोई ग्रंथ नहीं, नो ग्रंथ। कहते हैं अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको कृष्ण से कैसे प्रेम प्राप्त करना है, तो आपको भागवतम पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और उसको जीवन में लगाना पड़ेगा। बट अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, अगले वाक्य में कहते हैं एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भागवतम द प्रिलिमिनरी स्टडी इज भगवद गीता। कि भागवतम को समझने के लिए जो प्राथमिक ज्ञान है वो है भगवद गीता। भगवद गीता को पढ़ो, स्टडी करो, अंडरस्टैंड करो, ये आपको बताता है कि भगवान की रियल आइडेंटिटी, भगवान का स्वभाव, भगवान की नेचर कैसी है, आप कैसे हैं, और आपका भगवान के साथ संबंध कैसा है। ये ज्ञान आपको भगवद गीता देती है। जब आप थोड़ा एडवांस हो जाएंगे, जब आप जो है कन्विंस हो जाएंगे कि कृष्ण ही केवल प्रेम का रास्ता समझने के योग्य हैं, कृष्ण के सिवाय और किसी से प्रेम नहीं करना है, आपको वह पता लगेगा लवेबल ऑब्जेक्ट, प्रेम का विषय केवल कृष्ण है, तो उसके बाद आपको जो है भागवतम पढ़ना चाहिए। द नेक्स्ट बुक यू शुड स्टडी इज श्रीमद् भागवतम। अब आगे लिखते हैं भगवद गीता का ज्ञान आपका एंट्रेंस कोर्स है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। आप भक्ति के मार्ग पे चढ़े हो तो पहला स्टेप जो है क्या है, भगवद गीता को पास करना, भगवद गीता को पढ़ना और समझना। जस्ट एज स्टूडेंट्स पास देयर हाई स्कूल एग्जामिनेशन, जैसे बच्चे अपना दसवीं का इम्तिहान पास करते हैं, हाई स्कूल पास करते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, देन यू मस्ट पास योर हाई स्कूल एग्जामिनेशन इज हाउ टू लव गॉड बाय स्टडिंग भगवद गीता। इसीलिए इस पर्पट के अंदर भगवान प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का उल्लेख किया कि आपको जैसे दसवीं का एग्जाम पास करने के बाद, आप एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करने के बाद, बारहवीं पास करने के बाद आप कॉलेज में जाते हो, इसी तरह आपको जो है हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास करना है। एग्जामिनेशन क्या है, ये सीखना है हाउ टू लव गॉड, कि भगवान का प्रेम क्यों किया जाए और कैसे किया जाए। उसके लिए फिर आपको जो है भगवद गीता का ज्ञान जरूरी है। उसके बाद आपको पढ़नी चाहिए श्रीमद् भागवतम, जो कि ग्रेजुएट कोर्स है, जो कि हायर स्टडी है। اور جب آپ اور ایڈوانس ہو جاتے ہو دین یو آر ان پوسٹ گریجویٹ لیول یو شوڈ اسٹڈی چیتنیہ چرتامرتا وہ اور ایڈوانسڈ ہے سو دیر از نو ڈیفیکلٹی ان لرننگ دی سائنس آف لونگ کرشنا کوسٹ آف انلائٹنمنٹ چیپٹر 7 لو آف گاڈ الٹیمیٹ گول پلیسنگ اور لو ان کرشنا یہ بھگوت گیتا کا گیان جو ہے آپ کے لیے پراتھمک ہے اور ضروری ہے اس کے اوپر جو ہے بہت ہی سندر سندر جگہ ہے بھگوت گیتا لیکچر دیا ہے تیسرے ادھیائے کے 17ویں سے 20ویں شلوک میں نیو یارک میں مئی 27, 1966 میں روپا جی کہہ رہے ہیں بھگوت گیتا انٹرنس ہے اے بی سی ڈی ہے ویدک لٹریچر کا کلیئر مینشن ہے اے بی سی ڈی انٹرنس جسٹ لائک میٹریکولیشن ایگزامینیشن اسکول لیونگ ایگزامینیشن جب آپ کالج میں جاتے ہو گریجویٹ کورس کرتے ہو گریجویشن کرتے ہو پوسٹ گریجویشن کرتے ہو تو بھگوت گیتا از جسٹ انٹرنس فار انٹرنس ایگزامینیشن آف اسپرچل ایجوکیشن ادھیاتمک گیان کے اندر اگر آپ کو انٹر کرنا ہے تو آپ کی بگننگ بھگوت گیتا سے ہوتی ہے وچ یو شوڈ ماسٹر وہ پورن روپ سے آنی چاہیے یہ سادھارن ویکتیوں کے لیے ہے اٹ از ریٹن فار کامن مین کامن مین کامن مین ہاؤس ہولڈرس لیس انٹیلیجنٹ مین اینڈ وومن کلاس لائک دیٹ بھگوت گیتا کو جب تک آپ پڑھو گے نہیں جب تک سمجھو گے نہیں جب تک اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کرو گے تب تک بھاگوتم کا آنند نہیں آئے گا بھاگوتم پڑھ سکتے ہو اس پر سمجھ نہیں آئے گی بھاگوتم کو سمجھنے کے لیے بھاگوتم کا آنند لینے کے لیے آپ کو بھگوت گیتا کا گیان ضروری ہے پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کوئی بھی گرنتھ پڑھ سکتے ہیں یو کین ریڈ اینی بک یو لائک اینی گرنتھا یو لائک دیر از نو ریسٹرکشنز تو روکا نہیں گیا کسی بات سے یہ نہیں کہا کہ مت پڑھو یہ کہا گیا کہ اس کا آنند لینا ہے تو آپ کو جیسے ہم کہتے ہیں بچپن کے اندر بچے کو پڑھاتے ہیں یا تیرے کو میتھمیٹکس کرنا ہے نا پہاڑے آنے چاہیے تیرے کو پہاڑے آئیں گے نا تو تیرا کا میتھمیٹکس آسان ہو جائے گا یہ نہیں کہا کہ میتھمیٹکس مت کر کیلکولیٹر سے کرے گا پھر اگر اس کو پہاڑے آتے ہیں اس کو جو ہے ٹیبلز آتے ہیں تو اس کے لیے گناہ بھاگ گھٹا بھاگ سب کرنا جو ہے بالکل آسان ہو جائے گا اٹ ول بیکم ویری ایزی فار اٹ تو سملرلی جو ہے جیسے ہم بھگوت گیتا پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے بھاگوتم پڑھنا چتن چرتامرت پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا روپا جی نہیں میرے پاس فل والیوم ہے یہ سب اس آل از ریٹن فار وائی شوڈ ون ریڈ بھگوت گیتا ان ایڈوانس آف شریمد بھاگوتم الگ الگ لیکچرز میں الگ الگ طریقے سے الگ الگ شبدوں کا پریوگ کر کے جسٹ ایک ہی یہاں بھگوت گیتا کا لیکچر دے رہے ہیں 13ویں ادھیائے کے 22ویں سے 24ویں شلوک میں میلبورن جون 25, 74 اگر ہم ویدک شاستر پڑھتے ہیں اور پورن گیان پراپت کرتے ہیں تو ایسنس ہے ویدک لٹریچر کا سارانش نچوڑ تتو ہے شریمد بھاگوتم اور بھگوت گیتا از دی پریلیمری اسٹڈی آف شریمد بھاگوتم شریمد بھاگوتم کی جو پراتھمک گیان ہے بھگوت گیتا سے آئے گا پروپا جی اسپشٹ لکھ رہے ہیں بھگوت گیتا از اے بی سی ڈی آف نالج یہ انٹرنس ایگزامینیشن ہے میٹریکولیشن ہے اسکول لیونگ ہے اینڈ شریمد بھاگوتم از گریجویٹ یعنی جب آپ ادھیاتمک گیان میں گریجویٹ ہو جاتے ہو تب آپ جو ہے بھاگوتم کو سمجھنے لگتے ہو جب آپ نے بیچلر ڈگری پاس کری ہے تب آپ کو پوسٹ گریجویشن میں ایڈمیشن لینا چاہیے دا اسٹڈی از شری چیتنیہ چرتامرت ایک کے بعد ایک ایکسٹریکٹس ہیں اگر ہم ان ایکسٹریکٹس کو سمجھیں کہ شریمد بھاگوتم کرشن کا وگیان ہے جس کو ہم پرائمری انفارمیشن کہاں سے ملے گی ٹیکسٹ آف بھگوت گیتا چیتنیہ مہاپربھو نے کہا ہے اینی ون regardless of who he is well versed in science of Krishna, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita can become authorized preacher or preceptor of science of Krishna. پرچارک بننا ہے بھگوان کے گیان کا پرچار کرنا ہے تو بھی آپ کو جو ہے بھاگوتم سے پہلے بھگوت گیتا اچھے طریقے سے آنی چاہیے یو نو اٹ گڈ بڑھیا طریقے سے آتی ہے تو آپ بھاگوتم بھگوت گیتا کہیں بھی پرچار کر سکتے ہیں تو یہاں جو ہے پربھو پاد جی اسپشٹ لکھ رہے ہیں ایسے اپدیشوں کا سار بھگوت گیتا کے روپ میں اپلبدھ ہے منشیہ کو چاہیے کہ ان اپدیشوں کو گرہن نہ کر کے گیتا کے ہی اپدیشوں کا انوسارن کرے یہاں ان میں یہ گرنتھ نہیں آ رہے کہ بھائی گیتا ہی پڑھوں گا بھاگوتم نہیں پڑھوں گا ان کا مطلب ہے کہ ایسے گرنتھ جن کے اندر بھگوان کو نراکار روپ میں ستھاپت کیا گیا ہے بھگوان کو سگن ساکار روپ میں ستھاپت نہیں کیا ऐसे मिलेंगे आपको। अब उपनिषद पढ़िएगा, उपनिषद का जो फर्स्ट पार्ट है, जो इनिशियल उपनिषद है, उनके अंदर भगवान को निराकार स्थापित किया है। जो शंकराचार्य के ग्रंथ हैं, अंत में आकर उन्होंने स्वीकार किया भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, और गीता महात्म में लिखा। परंतु शुरू शुरू में उनका जो प्रचार था टोटल निराकारवाद पे था, निर्विशेषवाद पे था, बिगनिंग उनकी यहीं से हुई। इसी तरह जो है बहुत सारे आज की डेट में सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुज हैं, जो अपने आप को कहते हैं मेरा ग्रंथ पढ़िएगा, मैंने भी तो लिखा है। उनमें सबने जो है भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं किया गया। वो तो कहते हैं महापुरुष हुए हैं, महान पुरुष तो महाराणा प्रताप भी थे, महापुरुष तो शिवाजी भी थे, महापुरुष कृष्ण भी हुए। एट पार कर दिया, बराबर कर दिया। मतलब जो इस भौतिक संसार में आज के युग के अंदर कल जो है कोई भी जो राजनीतिक नेता है उसको भगवान के बराबर स्थापित कर दिया जाएगा, ये भगवान है। तो ये बात जो है, मुझे याद है मैं जब साउथ इंडिया जाता था तो वहां पर जो है एक फोटो लगी रहती थी लोगों के घरों में, अभी भी आता टीवी में कभी कभी, ओल्ड मैन गाड़ी रखी हुई साउथ इंडियन है, वाइफ साथ बैठी हुई। हम कल की अवतार है। अच्छा, तो बेलगाम मंदिर में मैं लेक्चर दे रहा था, तो बाद में किसी ने ऐसा प्रश्न कर दिया, तो चूंकि मैंने उनके बारे में सुना नहीं था, देखा नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं था, पैसेट के आई एम सॉरी, मैं उनके बारे में जानता नहीं हूं, तो कोई और जानता है तो बताए। तो एक भक्त थे खड़े हुए, कहने लगे कि मैंने उनको देखा है पर मैं उनके पास जा नहीं पाया। मैंने क्यों? कहते हैं कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पैर छूने के लिए, उनके मतलब दंडवत करने के लिए, पैरों को छूने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और 1.5 लाख रुपया फीस। 1.5 लाख रुपया उनके पैरों को टच करने का खर्चा है। तो दिस इज द कंडीशन। पत्थर की नाव में सब सवार है, खुद तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, ले डूब जाएंगे सारे। यहां जो इस पर्पट को ध्यानपूर्वक जो है समझने का है कि आपको एक ही कार्य करना है। अगर आप अपने आप को अव्यवस्था से बचाना चाहते हैं तो रास्ता है कृष्ण भावनामृत, भगवान कृष्ण को तत्व समझें और उसके सिवाय और कुछ नहीं। जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे, भगवान नाम के प्रचार में लग जाओगे, आपके जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य, जीवन का आनंद, जीवन का मजा बदल जाएगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।